તારીખ 25-8-1998 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 363 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 292
363 પ્રશ્ન ચાલતા હૈ પૃષ્ઠ 197 હિન્દી મેં 197 પ્રશ્ન હૈ કિસીને વ્યક્તિગત પ્રશ્ન કિયા હૈ કે આપને તો છોટી ઉમ્ર મેં સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કર દિયા શ્રીને 18 સાલ કી ઉમ્ર મેં સમ્યક દર્શન કો પ્રાપ્ત કિયા થા ઓર હમ ગુરુદેવ કા ઇતના ઉપદેશ સુનતે હૈ અને બહુત કાલ ઉમર ભી હોગી બહુત ટાઈમ બહુત સમય સે સુનતે હૈ તબ ભી અંદર મેં કાર્ય નહીં હોતા તો ક્યા રુચિ મેં હમારી રુચિ મેં કમી હૈ ક્યા એસા પ્રશ્ન ક્યા હૈ તો બહેનશ્રીને એસા સીધા નહીં કહા કે આપકી રુચિ મેં કમી હૈ આપકો ક્યા કરના ચાહીએ વો બાત કહી ક્યા પદ્ધતિ હૈ દેખે આપ અજ્ઞાની હૈ આપકી રુચિ મેં કમી હૈ આપકો કુછ આતા નહીં હૈ આપ એસે હૈ વૈસે હૈ વો બાત નહીં કરતે હમને એસા ક્યા થા વો ભી નહીં કહેતે હૈ લેકિન સમજ લેના ચાહીએ વૈસા આપ કરો જૈસા હમને ક્યા ઓર અનુભવ અનુભૂતિ હુઈ આપ ભી વૈસા કરીએ ક્યા કહેતે હૈ કે પુરુષાર્થ કરના વો અપને હાથ મેં હૈ પુરુષાર્થ તો સ્વાધીન હૈ સ્વાધીન કાર્ય હૈ પરાધીન કાર્ય નહીં હૈ પુરુષાર્થ કરને મેં સંયોગ કી અનુકૂળતા ચાહીએ વો બાત નહીં હૈ સંયોગ કી અનુકૂળતા તો ઠીક લેકિન શરીર કી અનુકૂળતા ચાહીએ વો ભી નહીં હૈ સ્વાસ્થ્ય ઠીક રહે તબિયત બિગડે નહીં તબિયત ઠીક રહે તો હમ પુરુષાર્થ કર સકે વરના નહીં કર સકે વો બાત નહીં હૈ હર હાલત મેં જીવ અપના પુરુષાર્થ કર સકતા હૈ કોઈ ભી પ્રકાર કા દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ ભાવ હો પુરુષાર્થ કરને કે લિયે સ્વાધીન હૈ જીવ ઉસકા જીવંત ઓર જ્વલંત ઉદાહરણ હૈ જીવંત ઉદાહરણ હૈ સૌભાગભાઈ કા સૌભાગભાઈ વૃદ્ધાવસ્થા મેં થે ડેથ બેડ પે થે મૃત્યુશૈયા જિસકો બોલતે હૈં બીમારી થી પિછલે 8-10 મહિને સે બીમાર થે વૃદ્ધાવસ્થા મેં 8-10 મહિના બુખાર ચલે તો કિતની કમજોરી આ જાય તો સમજાને કી જરૂરત નહીં ફિર ભી એસી અવસ્થા મેં ખટિયે પે સોતે સોતે સમ્યક દર્શન કે તો પ્રાપ્ત ક્યા હૈ ખટિયે પે સોતે રહેને પર ભી ઉન્હોને પુરુષાર્થ ક્યા હૈ હો સકતા હૈ જીવ કો ચૈતન્ય વીર્ય કી સ્ફુરણા હોની ચાહીએ ભીતર મેં સે સ્વભાવ મેં સે ચૈતન્ય કા પુરુષાર્થ ચલના ચાહીએ અંદર સે ચલના ચાહીએ અપના સ્વરૂપ જો કે સ્વભાવ સે પ્રત્યક્ષ હૈ અનંત પ્રત્યક્ષ હૈ કિતના પ્રત્યક્ષ હૈ કેવલ જ્ઞાન અનંત પ્રત્યક્ષ હૈ तो वो तो स्वभाव में से निकली हुई पर्याय है, तो स्वभाव वैसा ही है अनंत प्रत्यक्ष। ऐसे अनंत प्रत्यक्ष स्वरूप को प्रत्यक्ष करने से पुरुषार्थ का उछाला आता है। क्या होता है? स्फूर्णा होना मैंने उछलना, जोर से मैं ऐसा ही हूं, वो बात वो प्रकार प्रत्यक्ष स्वरूप को प्रत्यक्ष करने में होता है। दीपचंद जी अनुभव प्रकाश में वो बात लिखते हैं कि ज्ञानी होते हैं वो अपने प्रत्यक्ष स्वरूप को बार बार प्रत्यक्ष कर करके स्वसंवेदन की वृद्धि करता है, आनंद की वृद्धि करते हैं, वो प्रत्यक्षता से होती है। और उल्टे में भी देखो ना, कोई बात प्रत्यक्ष होती है तो परिणाम में तीव्रता हो ही जाती है। जैसे हमने हमारे स्वजन के मृत्यु का समाचार सुना, बाहर गांव गए और टेलीफोन आ गया कि भाई डेथ हो गया है आपके घर में, फौरन हम घर पे लौटेंगे, दुख तो वहां से चालू हो ही गया है, परोक्ष ज्ञान हुआ तो भी दुख तो चालू हो ही गया है। तो मुर्दा को देखते क्या होगा? एकदम जोर से दुख का आविर्भाव होगा कि नहीं होगा? हाँ, क्यों? प्रत्यक्ष हुआ। प्रत्यक्ष में रस तीव्र होता है। लोग क्रिकेट देखने को जाते हैं और टीवी पर भी वो दिखाते हैं, टीवी पर तो अधिक अच्छा दिखाते हैं, 8-10 कैमरे लगते हैं, 8-10 एंगल से दिखाते हैं एक ही बात को, और स्लो स्पीड में भी दिखाते हैं। वहां तो प्रत्यक्ष दिखने में एक पलकारा लग जाए तो देखने का बंद होता है, उसने शॉट लगाया और आपका पलकारा आ गया तो आपने देखा नहीं। फिर भी पैसे खर्च करके, धंधा छोड़ करके वहां प्रत्यक्ष देखने को क्यों जाते हैं? वहां जो रस आता है वो टेलीविजन पर वो रस नहीं आता है, क्योंकि आखिर में वो परोक्ष है। वहां भी टेलीविजन पर भी जीवंत प्रसारण, हाँ, लाइव कहते हैं ना, हाँ, फिर भी वो लाइव नहीं है, वहां कोई लाइफ नहीं है इसलिए लाइव नहीं है। प्रत्यक्षता का कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। इसलिए सत्पुरुष की भी प्रत्यक्षता का विषय चला कल रात को, और आत्मा को भी प्रत्यक्ष करने से ही जो भाव आता है, जो पुरुषार्थ होता है, वो पुरुषार्थ किसी और तरह से नहीं होता। इसलिए पुरुषार्थ कैसे करना, इस स्वरूप को प्रत्यक्ष करके करना। कैसे करना? स्वरूप को प्रत्यक्ष कर करके करना, और स्वरूप है भी प्रत्यक्ष। ज्ञान में प्रत्यक्षता होनी चाहिए। विधि तो भावभाषण वाली है, अनुभवांश से प्रतीति आती है, उसमें प्रत्यक्ष अंश से प्रतीति आती है। प्रत्यक्षता क्या होती है? ज्ञान जब तक इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्ति करता है तब तक परोक्ष रहता है। जैसे हम बोलते हैं कि हमने ये प्रत्यक्ष देखा आँख से, हमारी आँख से प्रत्यक्ष देखा, वो व्यवहार प्रत्यक्ष है। परमार्थ में वो परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान और ज्ञेय के बीच में इंद्रियों का माध्यम हुआ। जबकि ज्ञान अपनी शक्ति से कार्य करता है फिर भी कमजोर है, तो दूसरे पदार्थ का बीच में आलंबन आता है। जबकि अपने स्वरूप ज्ञान में ज्ञान ज्ञान वेदन से अनुभव करता है, वो ज्ञान का प्रत्यक्षपना है। मन का आलंबन से जो ज्ञान होता है, अनुमान तर्क शास्त्र और विचार से, ये सब परोक्ष ज्ञान है। और ज्ञान स्वयं का वेदन करता है, ज्ञान ज्ञान का वेदन करता है, वो ज्ञान प्रत्यक्ष है, क्योंकि इसमें कोई मीडिएटर माध्यम नहीं है। पर मैंने अन्य अक्ष, मैंने इंद्रियां, पर इंद्रियों से ज्ञान जाने, वो ज्ञान परोक्ष है। और अपने ज्ञान से ज्ञान ज्ञान को जाने, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, वही प्रत्यक्ष ज्ञान की विधि है, स्वसंवेदन की वो विधि है। और ऐसा ज्ञान वेदन आबाल गोपाल को, सभी को मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान अन्य का वेदन कर ही नहीं सकता, ज्ञान ज्ञान का वेदन कर सकता है, दूसरा का वेदन कर ही नहीं सकता है, और ज्ञान स्वयं का वेदन का त्याग भी नहीं कर सकता है, इसलिए ग्रहण करने का सवाल उत्पन्न नहीं होता। लोग ऐसे सोचते हैं कि हमको स्वसंवेदन प्रकट करना है, हमको स्वसंवेदन प्रकट करना है, लाना है, उत्पन्न करना है। कहते हैं कि तुम खुद ही अनुभूति स्वरूप हो, तुम स्वयं ही अनुभूति स्वरूप हो, और अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा तुमको निरंतर अनुभव में आ ही रहा है, तुम्हारा लक्ष्य कहीं और जगह है, इसलिए मालूम नहीं पड़ता। लक्ष्य को ठीक करो, लक्ष्य को स्वस्थान में ले आओ, स्वसंवेदन जो है वो अनुभव गोचर होएगा। है फिर भी अनुभव गोचर नहीं होता है, इसका कारण लक्ष्य कहीं और जगह है, बस उतनी सी बात है। तो विधि वो है कि लक्ष्य को बदलना, पर लक्ष्य से अपने ज्ञान को छुड़ाना, वही इसकी विधि हुई। देखो विधि हुई नास्तिक की, क्या हुआ? विधि हुई नास्तिक की, क्योंकि अस्ति तो है ही, अस्ति को करना नहीं है, बनाना नहीं है, उत्पन्न करना है ही नहीं, वो तो चालू ही है, है? और नास्ति में खड़ा है, वहां से हटना पड़ेगा। गलत जगह पे खड़ा है, स्वस्थान में नहीं खड़ा है, तो वहां से हटना पड़ेगा। वहां से हटना नहीं तो वो बात नहीं चलेगी, वो चलने वाला नहीं, ऐसी बात। पर से पहले आंशिक प्रत्यक्षता से भाव भाषण आता है, यहां से स्वरूप सन्मुख ज्ञान और पुरुषार्थ का आंशिक परिणमन चालू होता है और ज्ञान बल बढ़ जाता है, तब निर्विकल्प स्वानुभव में अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान में स्वरूप का प्रदेश प्रदेश से स्वसंवेदन आता है और आनंद का वेदन आता है सभी प्रदेश से, वहां कहने में आता है कि प्रत्यक्ष हो गया, आत्मा वहां प्रत्यक्ष और प्रकट हो गया, वो चतुर्थ गुण शांत से हो जाता है। गुरुदेव कहते थे कि जैसा केवल ज्ञान में सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा वितराग देव आत्मा को जानते हैं, वैसा चतुर्थ गुण स्थान में अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान में चौथे गुण स्थान वाला जीव जानता है, चाहे वो तिर्यंच हो, चाहे मनुष्य, चाहे देव हो, चाहे नारकी, चारों गति में सम्यक दर्शन होता है, हो सकता है। नरक की अकथ्य पीड़ा में, पीड़ा के काल में भी सम्यक दर्शन हो जाता, हो सकता है। इसलिए शरीर की प्रतिकूलता से सम्यक दर्शन नहीं हो, वो बात है ही नहीं, वो बात नहीं होती। जहां तक एक भी गलत या विपरीत अभिप्राय है वहां तक स्वसंवेदन नहीं होगा। विपर्यास चला जाता है तभी, क्योंकि नास्तिक को नास्ति से तो हटना ही पड़ेगा, तो परमाणु अनुसार में एक बोल लिया है कि जहां सुधी नंबर याद में थे, जहां सुधी विपर्यास रहे छे, कोई अंशे पण विपर्यास रहे छे, अभिप्राय नो विपर्यास, परिणमन में तो ठीक अलग बात है, वो आचरण का विषय हो गया। ये अभिप्राय में श्रद्धा ज्ञान का संबंध है। जहां तक अभिप्राय का एक भी विपर्यास रहता है स्वसंवेदन नहीं आता। इसलिए मुमुक्षु की भूमिका में गलत अभिप्राय विपरीत अभिप्राय को छुड़ाने की पूरी योजना है। ये जो मुमुक्षुता आरोहण क्रम है वो गलत विपरीत अभिप्राय को छुड़ाने की एक व्यवस्थित योजना है। वो योजना ज्ञानी पुरुषों ने बहुत प्रेम से प्रदान की है, उसका दान दिया है। हाँ, ये उन महात्माओं की देन है जिसको हमें अंगीकार करना चाहिए। चैतन्य का रटन बारंबार करते रहना, उसमें थकना नहीं, उसी में ही लगा रहे तो भीतर प्रवेश होने का अवकाश है। अब ये इसमें दो प्रकार होता है। चैतन्य का मैंने स्वरूप का नायक का रटन बार बार करते रहना भावना पूर्वक, वो बात नीचे लेंगे, वो नीचे लिया है। लेकिन कुछ एक लोग भावना रहित भी रटन में आ जाते हैं, रटन में आते हैं। कुछ एक लोग भावना पूर्वक रटन में आते हैं, कोई भावना बिना भी रटन में आते हैं। भावना बिना की बात वो नहीं है, भावना वाले की बात है। क्या है? भावना वाले की बात है। भावना बिना स्वरूप का रटन करने वाले को कोरा विकल्प रह जाता है, उसको जो फल आना चाहिए वो परिणाम उसको नहीं आता। तो महर्षि तो अपनी बात करते हैं, बहुत तीव्र भावना के वस्तु मुमुक्षुता का प्रारंभ होता है और उनको ऐसा ही हुआ था। तीव्र भावना हुई सत्संग की, सत्संग की माने आत्मकल्याण की, आत्मकल्याण की माने सत्संग की। घर छोड़ दिया, फिर उन्होंने रटन लगाई है, हम भावना में नहीं आए और रटन लगाए, ये बात रुखी सुखी हो जाएगी और कोई कार्य होने वाला नहीं है। उसमें दो प्रकार है, चैतन्य का रटन बारंबार करते रहना, उसमें थकना नहीं। थके कब? नहीं भावना होवे तो नहीं थके, वरना थकान आ जाएगी। उसी में ही लगा रहे, कब लगे रहे? भावना होवे तो, तब भीतर प्रवेश होने का अवकाश है। इसके पहले अंतर में प्रवेश होने का अवकाश नहीं होता। सम्यक दर्शन न हो तब तक थकना नहीं। क्या? जहां तक सम्यक दर्शन नहीं हो, थकना नहीं माने जंप नहीं होना। एक अजंपा पैदा होता है, मेरा कार्य नहीं हुआ, मेरा कार्य नहीं हुआ, मेरा कार्य नहीं हुआ, वो नहीं चले, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसा हो जाना चाहिए। तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन न हो तब तक थकना नहीं, वारंवार उसकी भावना रुचि श्रुत का चिंतन तत्व के विचार विभावों से विरक्ति चैतन्य की तथा देवगुरु शास्त्र की महिमा करते रहना। ऐसे ऐसे परिणाम चलना चाहिए। किस किस प्रकार के परिणाम चलना चाहिए? कि बारंबार भावना, पहली बात तो भावना की है और रुचि की है। भावना और रुचि साथ में रहता है, जिसको भावना है उसको रुचि है, रुचि है उसको भावना है। कहने की आवश्यकता नहीं कि उसको पूरी पूरी जरूरत लगी है। पानी की प्यास लगे और पानी का विस्मरण हो जाए, ऐसा कभी बनता है क्या? हाँ, स्वाध्याय में भैया टाइम पे आना, हमारे यहाँ डिसिप्लिन है, सभी लोग बिफोर टाइम आ जाते हैं। 7 बजे का टाइम होता है तो 7 में 5 में तो सब आ ही जाते हैं। अगर हम पीछे से आते हैं तो शास्त्र जी का अभिनय होता है। शास्त्र जी का अभिनय होने से दर्शन वो वृद्धि पामता है और जो शास्त्र हम सुनने को बैठते हैं उसका उपदेश हमको चढ़ता नहीं। तो हमारा पीछे से आने का जो होता है उसमें हमारा बाकी का समय बेकार हो जाता है, क्योंकि वो बात हमको चढ़ने वाली है ही नहीं। इसलिए हमारे यहाँ तो जो लोग आते हैं 100% बिफोर टाइम ही आते हैं, एक भी भाई और बहन पीछे से नहीं आएंगे। ये पद्धति यहाँ हो गई है जब से यहाँ स्वाध्याय चालू हो गया। वहाँ मंदिर जी में अलग बात थी, क्योंकि वहाँ तो बहुत पुराने लोग थे, तो पुराने लोग को तो पुराने पने का भी कुछ रहता है, तो वहाँ तो चलता था वैसा, वहाँ भी कहते थे, लेकिन जो सुनते हैं वो सुनते हैं, नहीं सुनते हैं वो नहीं सुनते हैं। लेकिन यहाँ तो वो बात नहीं रही है, यहाँ तो सब के सब जो भी आते हैं बिफोर टाइम ही आने वाले होते हैं। स्वाध्याय में, सत्संग में टाइम के पीछे आना तो एक अपराध है। क्या है? अपराध है। कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बेबस परिस्थिति हो जाए, अलग बात है। बाकी हमारा अभिप्राय और हमारा प्रयास, हमारी कोशिश टाइम पे उपस्थित होने की होनी चाहिए। क्या कहते हैं कि भावना और रुचि श्रुत का चिंतन, आप लोग तो बहुत दूर से आए हैं, काफी परिश्रम लेकर के आए हैं, सफर में तो परिश्रम लगता है, घर और परिवार को छोड़ कर के आए हैं। सत्संग तो एक दुर्लभ चीज है, सस्ती नहीं है, हम जाने दे इसके कुछ अंश को भी, हम जाने दे ऐसा हमें मूल्यांकन होना चाहिए, तब तो कुछ बात पल्ले पड़ेगी। वरना हमें अगर दरकार नहीं है तो ये बात पल्ले पड़ने वाली नहीं है, तो नुकसान हमको आएगा। तो जो भी आज लेट आए हैं, जो बाहर से आए हैं वो करीब लेट आए हैं, तो ध्यान खींचते हैं कि आइंदा ऐसा होना नहीं चाहिए। श्रुत का चिंतन होना चाहिए, मैंने शास्त्र में जो पढ़ा है सुना है उसका चिंतन चलना चाहिए। खाते पीते बैठते उठते सोते चलते फिरते चिंतन चलना चाहिए, और जिसको जिसकी रुचि है, जरूरत है, उसको तो उसका चिंतन चलता ही रहता है। ये सबों का अनुभव है कि नहीं है? तो हमको भी जो बात सुनी है समझी है उसका चिंतन चलना चाहिए। अगर चिंतन चलता है तो हमारी रुचि है, हमारी जरूरत है, वरना हमारी जरूरत नहीं है। हमारे बहुभाग मुमुक्षु की ये शिकायत है, टूट जाता है, थोड़ा चलता है फिर टूट जाता है, थोड़ा चलता है फिर टूट जाता है। इसका मतलब हमारी रुचि नहीं है। रुचि होने से ऐसा नहीं बनता। कैंसर होता है तो इसकी चिंता मिटती है क्या है? और भवरोग की चिंता होती नहीं। कैंसर की चिंता मिटती नहीं और भवरोग की चिंता होती नहीं। विचित्रता भी है और विपरीतता भी है। कितनी बड़ी विपरीतता है देखो। ये बात हो गई है। क्यों हुई? हमारी रुचि नहीं, हमको जरूरत नहीं लगी, हमारी भावना नहीं है। श्रुत का चिंतन, तत्व के विचार, क्या तत्व के विचार और विभावों से विरक्ति, जितने भी ज्ञान से अलग, ज्ञान से दूसरे दूसरे परिणाम है, वो सब विभाव है। मुमुक्षु की भूमिका में एक ज्ञान ही स्वभावंश जहाँ खुला है, ऐसा साधन रूप परिणाम है, बाकी सब विभाव के परिणाम है। उसमें से विरक्ति, उसमें रस नहीं है। चैतन्य की तथा देव गुरु शास्त्र की महिमा करते रहना, स्वरूप की महिमा करना, और स्वरूप जो दिखाते हैं ऐसे देव गुरु शास्त्र की महिमा करना। वो दिखाते हैं, प्रकट करके दिखाते हैं, बोल के दिखाते हैं उतना ही नहीं है, प्रकट करके दिखाते हैं। तो जिसको स्वरूप का दर्शन करना है, उनको वहां दर्शन करने का भी मौका है। इसलिए उनकी महिमा करना, इसलिए उनकी महिमा करना। करते रहना ऐसा कहा, इसका मतलब क्या है? सहज होना चाहिए, सहज ही होना चाहिए। टेंशन है, करते रहना, करे वो सहजता। अनुवाद में तो थोड़ा फर्क हो ही जाता है, मूल भाषा होती है उसमें जो टोन आता है वो टोन अनुवाद में नहीं आ सकता। जो भी ज्ञानी अपनी भाषा में बोलते हैं उसमें जो टोन आता है वो भाषा परिवर्तन करने में बदल जाता है, उतना तो फर्क हो जाता है। कार्य न हो तब तक चैतन्य को ध्येय में रखकर उसी में लगा रहे और उसी का मंथन करता रहे, किंतु थकना नहीं चाहिए। जब तक कार्य नहीं हो तब तक ध्येय के पीछे, ध्येय का मतलब यही है कि जिसका ध्यान रहे उसको कहते हैं ध्येय, जिसका लक्ष्य रहे, वहाँ एकाग्रता भी नहीं है मुमुक्षु की भूमिका में, तो उसका लक्ष्य रहता है, लक्ष्य है वो ध्येय के स्थान में है। हाँ, बेंच ने तो वो कहा है, आकाश पाताल एक करके भी अपना काम करना है, एक हो जाए तो हो जाए। मैंने संयोग में कितनी भी गड़बड़ी हो जाए तो भी हम ध्येय, हमारा ध्येय छोड़ने वाले नहीं है। कोई हमें हमारा ध्येय से छुड़ाने का प्रयास करे, ये बात बनने वाली नहीं है कि हम हमारा ध्येय को छोड़ दें, ये बात बनने वाली नहीं है। प्रतिकूलता इसी का नाम है कि ध्येय को छुड़ाने का, कुछ न कुछ बनता है उसमें। लेकिन जिसने यथार्थ रूप से ग्रहण किया ध्येय को, वो किसी हालत में अपने ध्येय को छोड़ेगा नहीं, उसी में लगा रहे, उसी का मंथन करता रहे। क्या करता रहे? उसी का मंथन करता रहे। चिंतन मनन मंथन घूंकन घूंटन छे ने, घूंटन का तो घूंटन होता है हिंदी, तो घूंटन का घूंटन होता ही है, उसमें क्या होता है? घूंटन में रस प्रगाढ़ता होती है और रस को तीव्र करना ही है, चैतन्य रस को तीव्र बनाना ही है। रस की तीव्रता तो होनी ही चाहिए। हमारा जो कुछ बिगड़ा है वो विभाव रस की तीव्रता से बिगड़ा है। किससे बिगड़ा है? विभाव रस की तीव्रता से बिगड़ा है। इसके सामने स्वभाव रस की तीव्रता होनी चाहिए। और मोक्ष की भूमिका में वो चिंतन मंथन घूंटन से रस तीव्र होता है। इसलिए कहते हैं भावना पूर्वक का जो विचार है उसमें रस होता है, और भावना बिना का जो विचार और रटन होता है उसमें रस नहीं होता है, वो फर्क पड़ता है। और परिणाम में जितना रस होता है उतना परिणाम ताकत वाला होता है। रस है वो परिणाम की ताकत है, वो परिणाम की शक्ति है, चाहे उल्टा चाहे सुलटा। कोई भी प्रकार का रस हो, उल्टा रस में उल्टी ताकत लगती है, सुलटा रस में सुलटी ताकत लगती है। इसलिए हमारे चैतन्य के विचार चिंतन मंथन और महिमा में स्वरूप का रस होना चाहिए। किंतु थकना नहीं चाहिए, और रस वाला नहीं थकेगा, रस वाला है वो नहीं थकेगा, इसलिए थकना नहीं चाहिए ऐसा कहते हैं। कौन थकेगा? रस वाला है वो, रस नहीं आएगा वो थक जाएगा। रस नहीं है इसका मतलब इसका कहीं और जगह तो रस है ही, इधर रस नहीं है तो दूसरी जगह तो रस है ही। रस बिना का तो कोई प्राणी है ही नहीं। बहुत समय हो गया और अंतर में कुछ हो नहीं रहा है इसलिए उसका रस उड़ जाए, ऐसा नहीं करना। ये बात ऐसे कही कि ये बात दिखने में आती है कि जो भी मुमुक्षु पुराने होते हैं जिसको बहुत समय ये बात सुनते सुनते हो जाता है और अंदर में कुछ काम नहीं होता है उसका रस उड़ जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कहते हैं, ऐसा नहीं करना। दिन प्रतिदिन हमारा रस वृद्धिगत होना चाहिए तो कार्य होगा होगा और होगा। अगर हमारा समय ज्यादा चलने से रस कम हो गया, ये परिस्थिति बहुत ही करुणाजनक है। कैसी है? करुणाजनक है। एक नई विटंबना को खड़ी कर दी हमने। क्या? प्रारंभ में जो विटंबना नहीं थी वो नई विटंबना एक पैदा हो गई। विटंबना कहो, अड़चन कहो, अवरोध कहो कि हमारा रस जो शुरू में था वो नहीं रहा, शुरू में जो हमारा रस था वो नहीं रहा। और बहुत से मुमुक्षों को ऐसा हो जाता है, इसलिए ध्यान खींचा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हो गया है, इसका क्या करें। चलो जब समस्या सामने आई है तो ये तो आप लोगों को छनछेड़ करके उसको उसका निराकरण करना चाहिए। प्रश्न तो आप लोगों को उठाना चाहिए। गुरुदेव कहते थे छनछेड़ी ने नक्की करवो, ऐसे सुनते मत रहिए। चालू प्रवचन में पूछते थे लोग, और चालू प्रवचन में ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हो और शायद कोई विषयांतर नहीं हो, इसलिए रात्रि को एक घंटा चर्चा का वो रखते थे। एक प्रवचन सुबह, एक प्रवचन दोपहर को कर देते थे, और रात्रि को एक घंटा चर्चा का रख लेते थे। जिसको भी कोई पढ़ा हो, सुना हो, विचार में आया हो, चिंतन में आया हो, असमाधान हो, जो भी कुछ पूछना है, कोई भी प्रश्न, रात्रि के एक घंटे के चर्चा में वो चलाते रहे। तो ये भी एक समस्या है कि चलो हम लोग पुराने हो गए, जो हुआ वो तो नहीं हुआ, वो तो बनने वाला है ही नहीं, और काम नहीं हुआ इसका मतलब के गड़बड़ी तो है ही। वो सबूत है इसका कि गड़बड़ी है, तब तो टाइम लगा है, उसको साबित करने की जरूरत रहती नहीं। चाहे हम स्वीकार करें नहीं करें, बात तो पक्की हो ही गई है, हुआ सो हुआ, वो तो नहीं हुआ तो हो ही नहीं सकता, थयू न थयू केम थाय, वो तो हो ही गया। अब क्या करें, कि अब हमको नया हो जाना चाहिए, पुरानेपन का ख्याल और अभिप्राय छोड़ देना। अब तक जो भी हमारा समय गया, शक्ति खर्च गया, सब बेकार हो गया, हम कुछ नहीं समझे हैं। क्या हम कुछ समझे ही नहीं, तब तो ये हालत हुई हमारी, समझते तो ये हालत होती नहीं। इसलिए हम तो अभी नए हैं, यहाँ से शुरू करना, जैसे कोई नया आदमी शुरू करता है वहां से शुरू करना, नयापन अंगीकार कर देना, पुरानापन को छोड़ देना। क्यों, ये कोई इज्जत का सवाल नहीं है, और इज्जत का सवाल बनाना भी नहीं है। इज्जत तो चली गई, पुराना हुए उसमें ही चली गई, अब क्या इज्जत रखना है। हम इतने पुराने हुए इसमें ही हमारी इज्जत तो चली गई है। अब नया होना है हमको, कि हम कुछ समझते ही नहीं थे, समझे ही नहीं थे, यहां से चालू करना है। फिर भी वो आसान नहीं है। जो भी पूर्व में कुछ भी ग्रहण किया है उसको छोड़ना आसान नहीं है, वो बीच में आड़े आता है। क्या होता है, बीच में आड़े आता है, उसको हटाना पड़ेगा। थोड़ा परिश्रम बढ़ेगा, और परिश्रम बढ़े ऐसी हमारी हालत हो गई है, हमने ही ऐसी परिस्थिति बनाई है कि हमको परिश्रम ज्यादा करने से ही अब लाभ होने वाला है। थोड़ा परिश्रम बढ़ेगा, फिर भी वो भी समझ करके हमको परिश्रम करना ही है। पहले वाली ग्रहण करी हुई कहीं बातें बीच में आएगी, आड़े आएगी, परलक्षित सूक्ष्म ज्ञान बीच में दखल करेगा, हमारे पुरुषार्थ में दखल करेगा और वही हमारी जो भी नुकसानी है वही हमारी नुकसानी को हमको भरपाई करना पड़ेगा। फिर भी हमको करना ही है, फिर भी करना ही है, जैसे कैसे भी करना है, हर हालत में करना है, कुछ भी हो जाए करना ही है, एट एनी कॉस्ट, कुछ भी कीमत पे हमको हमारे पुरुषार्थ का दाव लगाना है और हमारा काम कर लेना ही है, नहीं करना सो बात नहीं है। मैं अभी बाजी हाथ में है, अभी हमने बाजी नहीं छोड़ दी, हम हारे नहीं पर हारना भी नहीं है, डिप्रेशन में नहीं आना है। क्या करें, इतने साल हो गया हमारा काम नहीं हुआ है, डिप्रेशन में नहीं आना है, और उत्साह बढ़ाना है तो काम हो सकता है। क्या कहते हैं, किंतु थकना नहीं, बहुत समय हो गया और अंदर में कुछ हो नहीं रहा है, चलता भी नहीं है अभी, इसलिए उसका रस उड़ जाए, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। बारंबार उसी की भावना करते रहना। देखो अभी भावना की बात लिया है, बारंबार उसी की भावना करते रहना, पहले रटन किया था ने, अभी भावना की बात मुख्य किया। क्यों कि भावना दो तरह की नहीं होती, रटन दो तरह का होता है, बिना भावना वाला कृत्रिम भी होता है और भावना वाले को भी होता है। भावना वाले को होता है वो असल है और भावना बिना होता है वो नकल है, असल नहीं है, नकल से काम नहीं चलेगा। बारंबार उसी की भावना करते रहना, उसके समीप ही रहना, दूर नहीं जाना, हमारे स्वरूप से हमें दूर नहीं जाना है, हमारे पुरुषार्थ से हमें नहीं हटना है, समीप ही रहना है, लगे ही रहना है। ये बात एक गांठ जैसे, गांठ वाली हुई ना, पक्की कर लेना, पक्की गांठ कर लेना कि हमको हटना नहीं है, यहाँ से हटना नहीं है, हमारा काम तो चालू ही रखना है, यहाँ से नहीं हटना है, जैसे कैसे भी रख चालू ही रखना है चाहिए, ये तो पक्का होना चाहिए, छोड़ने की तो बात है ही नहीं। हाँ वो उनकी खास बात है, तेल मार भी टेल बोलते ना, टेल मारे थे ना, चैतन्य के दर्शन को, आत्मा के दर्शन को करते करने के लिए टेल लगाना है, वो हमारे वैष्णव संप्रदाय में क्या है, जब जाओ तब दर्शन भगवान का हो गए वैसी बात नहीं है, वहां उस समय पे दर्शन होता है, એટલે એ લોકો સમા સમાના દર્શન કે છે, અપભ્રંશમાં આમ તો સમય સમયના દર્શન કે છે, તો ક્યાં હોતા કે જો જિસકો દૂસરા કુછ નહીં હૈ, ભગવાન કા દર્શન કી લગી હૈ, વો હટતા નહીં હૈ, દરવાજા બંધ હૈ તો વહીં ઘૂમતા રહેતા હૈ, વહીં ઘૂમતા રહેતા હૈ, મતલબ ક્યા હુઆ ટેલ લગાને કા, दूर नहीं जाता है, दरवाजा खुल जाए और दूर हो गए तो आने में जितनी देर लगे उतना तो टाइम गया ना। यहाँ तो दरवाजा खुलते ही दर्शन हो गया, वहाँ ही टेंट लगाया, इसलिए इसका मतलब है वो कि उसको दर्शन हुए बिना कहीं चैन नहीं। घर में जवान लड़का लड़की होते हैं, रात्रि को घूमने को बाहर जाते हैं, 12 बजे 12 बजे नहीं आते, चिंता होती है, 1 बज गया नहीं आए और चिंता बढ़ी, क्या सो जाते क्या हैं कि चलो भाई वो तो नहीं आए, हमको तो नींद आती है, हैं नींद उड़ जाएगी, क्या होगा, नींद उड़ जाएगी और 1:30 बज गया फिर तो आधा घंटा भी और ज्यादा लगेगा, क्या करेगा, घर में चक्कर लगाने लगेगा, क्यों नहीं आए क्यों नहीं आए क्यों नहीं आए क्यों नहीं आए। हमारे एक मुमुक्षु थे, क्योंकि हमारा लड़के को बार बार दिल्ली जाना होता है, बम्बई से थे, बम्बई से दिल्ली जाते थे, और श्रीमंत आदमी था तो फिर वहाँ तो मीटिंगें चलती हैं तो टाइम हो जाता है, फिर रात्रि को फ्लाइट में आते नहीं, अर्ली मॉर्निंग सुबह की फ्लाइट में आते, कभी रात्रि को फ्लाइट में आते, टेलीफोन कर देते हैं कि हम इस फ्लाइट में आ रहे हैं। तो उनके पिताजी की हालत क्या होते थे, वो फ्लाइट का अराइवल पूछ लेते थे और 1-2 घंटे पीछे से उसका टेलीफोन चालू, फ्लाइट टाइम पर है कि नहीं है, फ्लाइट टाइम पर है कि नहीं है, तो फिर उतरा कि नहीं उतरा प्लेन, फिर उतर गया तो एयरपोर्ट से घर पहुंचने में इतनी देर लगती है, घर घर पहुंचे नहीं वहां तक बेचैनी, जहां तक लड़का घर पहुंचे नहीं वहां तक बेचैनी। भले ही बात बात में बने नहीं, लड़का वो कहेगा कि आपकी प्रकृति ठीक नहीं है पिताजी, आपकी प्रकृति में क्लेश होते हैं होता है, आप अपना कमरा अलग रख करके अपना ही काम करे, वो घर वाले को ज्यादा डिस्टर्ब मत करो, घर वाले मैंने कौन बहुओं को क्योंकि इनको प्रेम, लड़के का प्रेम को तो इनके प्रति होता है, हा? फिर भी कभी लड़का डांट भी देता है, फिर भी बाप को चैन पड़ेगा नहीं, कब आएगा कब आएगा कब आएगा, देरी हो गई कब आएगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा कुछ हो तो नहीं जाएगा कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि वो एकत्व बुद्धि है ना, मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है, वो मेरा अपना उसको चैन लेने देता नहीं। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है? बाप को नहीं होगा तो किसको होगा, माँ को नहीं होगा तो किसको होगा, ये सब दुर्गति में जाने के परिणाम है, क्या है, दुर्गति में ले जाएगी वो अपनापन, दुर्गति में ले जाएगा, लेकिन अज्ञान में उस बात का पता नहीं, तीव्र रस से परिणाम करते हैं और दुर्गति में चले जाते हैं। तो क्या है, समीप ही रहना मतलब क्या, कि जिसको जिसके पर प्रेम है वो दूर रहना चाहते हैं, नहीं आत्मा पर प्रेम है, आत्मा से दूर नहीं जाना है हमको, आत्मा से दूर नहीं जाना, आत्मा के ही भाव, उसके ही विकल्प, विकल्प में भी वो, बेविकल्प में भी वो, चिंतन में भी वो, बेचिंतन में भी वो, ऐसा चलना चाहिए, परिणति हो जानी चाहिए, उसको कहते हैं परिणति। चिंतन विकल्प पूर्वक होता है, परिणति होती है वो बेचिंतन में हो जाती है, परिणति हो जानी चाहिए, परिणति हो गए तो काम होगा ही होगा। मैं हाँ, गुरुदेव कहते थे ज्यादा नहीं समझो तो ज्ञानी को पकड़ के रहना, इसमें किसका मतलब वो था, गुरुदेव कहता था कि हमारी तो उम्र थी गई, वे बेंसरी लगभग 24 वर्ष नाना आता उम्र में, तो स्वाभाविक है कि हमारा पछे याती रही है, जो कि एम रही तो बीमार इतना रहता था कदाच पहला पण आयुष पूरु थी जाए, कोई आयुष नु ठेकाणु नहीं, पण एम अंदाज लगावीने तो अमे न होइए तो एमने वळगीने रहेजो, अने जे वळगीने रह्या ई बची गया, जे वळगीने रह्या ई बची गया, बाकी बचा नथी, બે વિભાગ થઈ ગયા સમાજમાં, એટલે વળગી ને રહ્યા એ બચી ગયા, એ ગુરુદેવની આજ્ઞા હતી, આજ્ઞામાં રહ્યા એ બચી ગયા, સીધી વાત છે કે ભૂલ થાય તો બીજા કોણ સુધારી શકે, નાનીની નજરમાં વાત આવશે કે ભાઈ આમ ન થાય ને આમ હોય ને આમ ન હોય, આમ હોય ને આમ ન હોય, બાકી બીજા કેવી રીતે ફેરફાર કરી શકે, ત્રેસઠ પ્રશ્ન યહાં સમાપ્ત હોતા હૈ, સમય ભી સમાપ્ત હુઆ હૈ, આત્મ સાક્ષાત્કાર અર્થે સૌથી પહેલા એની જરૂરિયાત લાગવી જોઈએ, આત્મ સાક્ષાત્કાર થી થતો લાભ અને આત્મ સાક્ષાત્કાર થી થતો નુકસાન થી બચાવ, તેની યથાર્થ સમજ, સમજણ પૂર્વક જો જરૂરત લાગે તો કોઈ પણ પ્રકારના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવમાં કોઈ પણ પ્રકારના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવમાં પ્રયાસ ચાલુ થાય, પ્રયાસ ચાલુ રહે અને તે પ્રયત્નમાં થાક લાગે નહીં. યથાર્થ સમજણ, યથાર્થ ભાવના અને રુચિને ઉત્પાદક છે. જ્યાં યથાર્થ રુચિ અને ભાવના નથી ત્યાં યથાર્થ સમજણ પણ નથી. એમ સમજવું ઘટે. આત્મકાર્ય સ્વાધીન છે, પરાધીન નથી.
સ્વતંત્રતા